ओम शांति, ओम शांति। अभी हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी आए हैं। सभी करतल बनी से हम दीदी का स्वागत करते हैं। तो वैसे तो आप अभी का जो सेशन है बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम आजकल कभी ना कभी जीवन में तनाव का अनुभव करते हैं। लेकिन इस सेशन के माध्यम से, डॉक्टर सविता दीदी जी के माध्यम से, हम जानेंगे कैसे वैश्विक एकता के लिए तनाव से मुक्त रहना है, तनाव मुक्त जीवन शैली आज के इस सेशन में हम सीखेंगे आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी के द्वारा। और दो अनाउंसमेंट, जैसे पहले भी मैंने बताया, जिन्होंने अभी तक सौगात नहीं ली है वो कल क्लास के बाद सौगात लेंगे जो शिविर में आए हैं। बाकी बीके टीचर्स और गाइड्स के लिए अलग से सौगात दी जाएगी, कल बताएंगे कहाँ पर आपको सौगात मिलेगा। बाकी शिविर में आए हैं और सौगात नहीं लिया है, कल सुबह क्लास के बाद लेंगे।
ओम शांति। आप सभी भी बोलेंगे एक बार फिर से, ओम शांति। आप सभी यहाँ शांति वन के शांत वातावरण में दो दिन से, तीन दिन से निवास कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ इस वक्त तो सभी तनाव मुक्त होंगे। है किसी को तनाव? नहीं। लेकिन जब अपने स्थानों पर जाएंगे तो फिर से वही समस्याएं होंगी, फिर तनाव हो सकता है। तो इसीलिए ये सेशन जो हमारे दिन प्रतिदिन की समस्याओं से संबंधित है, ये आपके लिए ये सेशन रखा गया है। तो जब हम तनाव की बात करते हैं तो आज हमारी स्थिति क्या है, तो कहा कि तनाव से हो गई है दोस्ती इस कदर कि तनाव होता है तनाव के न होने पर, कि हम इतना ज्यादा तनाव को अपना मान चुके हैं कि जब हमें तनाव नहीं हो रहा है तो हम सोचते हैं क्या हम कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ करेंगे तो जरूर तनाव होगा। तो कहा गया कि 18वीं सदी ज्ञान में उन्नति की सदी थी, 19वीं सदी को आविष्कारों की सदी कहा गया। बिन आविष्कार हुए, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य को बहुत सुख सुविधा के साधन मिले। तो जो 20वीं सदी आई वो सदी तो सुख की सदी होनी चाहिए थी, लेकिन उसे कहा गया एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। और अभी वर्तमान में हम 21वीं सदी में हैं, तो मेडिकल साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर यही हमारी जीवन शैली रही तो ये 21वीं सदी कौन सी सदी हो जाएगी, कौन सी सदी हो जाएगी, कौन सी सदी हो जाएगी? एज ऑफ पैनिक एंड डिप्रेशन। लेकिन अगर हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन ले आते हैं तो ये सदी शांति की सदी भी हो सकती है। तो फिर हम कौन सी सदी में रहना चाहेंगे, कौन सी सदी में रहना चाहेंगे? सब हिंदी समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? जो हिंदी समझते वो हाथ उठाइए। अच्छा, मेजोरिटी समझ रहे हैं तो फिर जवाब नहीं दे रहे। तो कौन सी सदी में रहना चाहेंगे? हाँ, एज ऑफ पीस में रहना चाहेंगे। तो फिर हमें अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाना होगा, तभी वो शांति की सदी हो सकती है। तो आज हम देखते हैं कि बच्चों को भी तनाव होता है, जिसे खेलने मौज करने की उम्र माना जाता था उसमें भी तनाव प्रवेश हो चुका है। अपने यहाँ एक मेडिकल विंग है जो लोगों को स्वास्थ्य की शिक्षा देने के लिए अनेक कार्यक्रम करते हैं। जैसे कल आपने सुना, पूरे देश में अभी नशा मुक्त अभियान चल रहा है, तो ऐसे ही एक शहर में स्वास्थ्य मेला लगाया गया हेल्थ एजुकेशन देने के लिए। तो उसमें अलग अलग स्टॉल बने हुए थे और उसमें एक जो स्टॉल था उसमें एक यज्ञ कुंड बना हुआ था और उसमें कहा गया कि आप इसमें अपनी कोई कमी का दान दो। तो मानो कोई शराब पीता है, सिगरेट पीता है या गुटखा खाता है, जो भी और भी कोई कमी है तो आप इसमें यहाँ दान करके जाओ। तो एक माता पिता अपने बेटे के साथ वो मेला देख रहे थे। तो जब वो वहाँ पहुँचे उस कुंड पे, तो माँ को बहुत अच्छा लगा। उसने अपने बेटे को कहा कि बेटा तुम चॉकलेट बहुत खाते हो, इससे तुम्हारे दांत खराब हो रहे हैं, डॉक्टर तुम्हें मना करते हैं चॉकलेट खाने के लिए, तो तुम अपनी चॉकलेट यहाँ दान कर दो। तो वो बेटे ने कहा कि माँ मुझे सोचने दो, मुझे क्या दान करना है। और एक मिनट सोच के वो बोलता है मैं अपनी पढ़ाई दान कर दूँ, मुझे पढ़ाई से बहुत टेंशन होती है। तो बच्चों को आज हर स्टेप पे कंपटीशन फेस करना पड़ता है। स्कूल में एडमिशन लेना है तो भी कंपटीशन, कैरियर के लिए कोई भी एग्जाम पास करना है उसमें भी कंपटीशन। तो इतना स्ट्रेसफुल है उनकी लाइफ आज के समय में, इतने प्रेशर्स हैं। तो तनाव हमें क्यों होता है? जब प्रेशर्स हमारे ऊपर ज़्यादा हैं और कोपिंग एबिलिटी कम है, यानी परिस्थितियों की मांग ज़्यादा है और उसकी तुलना में अगर हमारी सामर्थ्य कम है तो जो हम महसूस करते हैं ना वो एक दर्द है। स्ट्रेस इज ए फॉर्म ऑफ पेन दैट कम्स टू टेल मी देयर समथिंग आई नीड टू चेंज। एक प्रकार का दर्द है जो मुझे ये संदेश देता है कि मुझे कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता है और उस परिवर्तन को लाने के लिए हमें कुछ नया सीखना होगा, तभी हम वो परिवर्तन ला सकते हैं। और आज प्रेशर्स हमारे ऊपर चारों तरफ से आते हैं, पास्ट में हमारे जीवन में कुछ ना कुछ घटनाएं होती हैं जो हमें बार बार स्मृति में आती हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों किया। तो उस समय जब बात हुई होती है तो छोटी होती है, लेकिन उसको हम सोच सोच करके बड़ा रूप देते हैं, कहते हैं हम राई को पहाड़ बना देते हैं और वो हमें वर्तमान में भी दर्द महसूस कराती है। एक छोटी चीज है, मेरे हाथ में है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर घंटों तक मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया तो क्या होगा, मेरा हाथ दर्द करने लगेगा, और कुछ घंटे पकड़ लूंगी तो मेरा हाथ शून्य भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि कितना लंबा समय मैंने इसको पकड़ा। ऐसे ही जीवन में हम बातों को पकड़ लेते हैं और उसे हम जाने नहीं देते, तो फिर वो भी हमें तनाव देती है। कई लोगों को भविष्य की चिंता होती है, क्या होगा, कैसे होगा, जो हम सोचते हैं वो होगा कि नहीं होगा। कितने प्रकार की चिंताएं आज मनुष्य को लगी रहती हैं। परिवार वाले हैं तो बच्चों की चिंता, बीमारी की चिंता, धन की चिंता, फिर रिटायरमेंट होगी उसके बाद की चिंता, कोई ना कोई चिंता जीवन में जैसे चलती ही रहती है। और वर्तमान की अपनी समस्याएं होती हैं, तो कुल मिलाकर प्रेशर्स हमारे ऊपर बने रहते हैं। और जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे शरीर में परिवर्तन आता है, हमारी बॉडी फिजियोलॉजी चेंज होने लगती है, शरीर में कैटाकोलामिन्स बनते हैं, स्टेरॉइड्स बनते हैं जो स्लो पॉइजन का काम करते हैं और हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं जिन्हें हम साइकोसोमैटिक बीमारियां कहते हैं। आज लाइफस्टाइल डिजीजेस के नाम से उनको हम जानते हैं। तो येल यूनिवर्सिटी एक अमेरिका में है जिसने विद्यार्थियों के ऊपर एक स्टडी की। उनकी 20 साल की उम्र थी और उनको उनके व्यक्तित्व के अनुसार दो ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप में उन विद्यार्थियों को लिया गया जो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते थे, जो धैर्य नहीं रख सकते थे, अपने मन को शांत नहीं रख सकते थे, और दूसरे ग्रुप में उन स्टूडेंट्स को लिया गया जो इसके विपरीत स्वभाव के थे, जो शांत स्वभाव के थे, जो धैर्य रख सकते थे और जो मन को स्थिर कर सकते थे। अब उनके स्वास्थ्य की जांच की गई तो उस आयु में दोनों ही ग्रुप का स्वास्थ्य सामान्य था, किसी को कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन क्योंकि एक स्टडी थी तो हर 10 साल में उनको फॉलोअप के लिए बुलाते थे, तो ये देखा गया 50 साल की उम्र तक आते आते जो पहला ग्रुप था, यानी जो जल्दी टेंशन में आ जाते थे, उनके अंदर दूसरे ग्रुप की तुलना में 5 गुना अधिक बीमारियां हो चुकी थी। यानी अगर दूसरे ग्रुप में 5 लोग बीमार हुए तो पहले ग्रुप में कितने हुए? 5 गुना ज्यादा कितने हुए? 25 लोग। यानी किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी, किसी को हार्ट की बीमारी, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी, किसी को डायबिटीज की बीमारी, हाँ किसी को पेट में एसिडिटी, कोई ना कोई ऐसी लाइफस्टाइल की बीमारी शुरू हो चुकी थी। इसीलिए उनके मृत्यु की संभावना भी दूसरे ग्रुप से 5 गुना ज्यादा थी। तो यही कारण है कि हमें अपने तनाव को कम करने का या तनाव को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। तो जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं उसमें सबसे ज्यादा असर हमारे हार्ट पर होता है। हालांकि हार्ट की जो बीमारी होती है अन्य कारणों से भी होती है, लेकिन स्ट्रेस एक मेजर फैक्टर है और उसका असर आता है, हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और अगर कोरोनरी ब्लॉकेजेस हैं और जब हम तनाव में होते हैं तो हृदय की जो धमनियां हैं वो और सिकुड़ जाती हैं और उसकी वजह से हृदय को ऑक्सीजन कम मिलती है और फिर छाती में सीने में दर्द होता है जिसे हम एंजाइना कहते हैं। और अगर लंबे समय तक ये चलता है तो फिर ये अटैक में भी बदल सकता है। आजकल हम देखते हैं कम उम्र में लोगों को हार्ट की बीमारियां होने लगी हैं। जो बीमारी 60 साल के बाद की उम्र की मानी जाती थी वो आज 35 इससे भी कम उम्र में आज हार्ट के पेशेंट्स जो हैं हॉस्पिटल्स में आते हैं, और उसका कारण है स्ट्रेस। फिर उसका असर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी होता है, यानी पेट में एसिड ज्यादा बनता है, हाइपर एसिडिटी होती है, उसकी वजह से पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया होता है। हमारे नर्वस सिस्टम पर इसका असर आता है, उसकी वजह से सिर में दर्द होना, थकान बने रहना, नींद नहीं आना, ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई आजकल कि कितने करोड़ लोग हैं जो नींद की गोली खाकर सोते हैं। आज तो नींद नहीं आती, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो लंबे समय तक रहने से डिप्रेशन होने लगता है। आज ये बीमारी भी कॉमन होती जा रही है, हर 4 में से एक व्यक्ति को डिप्रेशन होता है। फिर लोग अपने तनाव को कम करने के लिए क्या करते हैं? व्यसनों का सहारा लेते हैं। जो पुरुष हैं या तो शराब पिएंगे, सिगरेट पिएंगे या कोई भी ड्रग्स नशा करेंगे तो थोड़े समय के लिए तनाव कम हो सकता है, लेकिन उसका स्वास्थ्य पर और बुरा असर होता है और परिवार तनाव में आ जाता है साथ साथ में ना? और ऐसे ही डायबिटीज और आर्थराइटिस, ये भी साइकोसोमेटिक बीमारियां हैं। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है। इम्यूनिटी से हम सभी परिचित हैं, है ना? कोविड के बाद सबको समझ में आ गया कि इम्यूनिटी क्या होती है, रोगों से लड़ने की हमारे शरीर की जो क्षमता है उसको इम्यूनिटी कहते हैं। तो अगर इम्यूनिटी कम होगी तो वातावरण में जो भी वायरस फैलेगा या बैक्टीरिया फैलेगा उसका असर या वो बीमारी हमें सहज लग जाएगी, है ना? जब भी कोई बीमारी फैलती है, मानो कोविड ही फैला, तो वो सबको एक जैसा नहीं होता है। दो मिनट हम साइलेंस में।
योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज।
संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज।
तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज।
सुख शांति और पावनता से भोले भर लो आज।
योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। चलना है, चलना है घर वापस अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा।
तो रोगों से लड़ने की जो हमारी ताकत होती है, वो जो भी इन्फेक्शियस डिजीज फैलते हैं उनसे हमें बचाती हैं। लेकिन अगर वो कमज़ोर हो जाती है इम्यूनिटी, तो हमने देखा कि वो कोरोना भी वो ऐसा वायरस जो इतना सूक्ष्म है कि हमें दिखाई भी नहीं देता, लेकिन कितना जानलेवा फिर वो हुआ। तो ये प्रभाव तनाव का पड़ता है हमारे शरीर पर। अब हम सभी अनुभवी हैं अपने जीवन में कौन सी ऐसी स्थितियां आती हैं जब हम तनाव में आ जाते हैं। चाहे वो हमारे परिवार की समस्या है, चाहे जहां हम काम करते हैं वहां की समस्या है, चाहे हमारी अपनी कोई पर्सनल है ना, अपनी पर्सनल कमी हो सकती है कोई। तो आप हमसे शेयर करेंगे अभी कुछ मिनट्स के लिए कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम तनाव में आ जाते हैं। तो जो भी कोई भी आप शेयर कर सकते हैं, माइक आएगा आपके पास, आप माइक में बोलिए। बताना चाहते हैं कोई, या समझते हैं अभी हम यहाँ शांति मन में बैठे हैं, अभी तो हम बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हैं। बहनें, बहनों की साइड में कोई शेयर करना चाहेंगे, वो हाथ उठा रहे हैं उधर।
भविष्य की चिंता है।
भविष्य की चिंता।
सम सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज एंड सम रैश ऑफ मेडिसिन।
अच्छा, तो बीमारी के कारण किसी को कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो लाइफ लॉन्ग चलने वाली है, तो फिर उसकी भी चिंता होती है।
पीस ऑफ माइंड
के लिए स्ट्रेस होता है ऐसे?
सो मेनी फैमिली
चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, स्ट्रेस है, पीस ऑफ माइंड चाहिए।
गवर्नमेंट जॉब
हम पूछ रहे हैं आपको, रीजंस, आप किस कारण से तनाव में आ जाते हैं?
सो मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर इन अवर लाइफ, फैमिली प्रॉब्लम्स एंड आल्सो जॉब प्रॉब्लम्स।
इन जनरल बता दिया आपने, हाँ। अब फैमिली प्रॉब्लम्स तो लंबी लिस्ट है।
दीदी जी, वार का प्रॉब्लम।
किसका प्रॉब्लम?
वार, युद्ध।
वात,
युद्ध, युद्ध,
युद्ध। अच्छा, वॉर। अच्छा, वॉर का प्रॉब्लम, वो दुनिया की प्रॉब्लम है। हमारे घर में वॉर का कोई असर नहीं आ रहा, हम न्यूज सुनते हैं तो टेंशन में आ जाते हैं।
बच्चों के बिहेवियर के बारे में।
हाँ, बच्चों का बिहेवियर माँ बाप के लिए ये बड़ी चिंता की बात होती है। यस,
ओम शांति। बच्चों का भविष्य के लिए एक पाया,
बच्चों के भविष्य के लिए, अगर बच्चे सिंसियर नहीं है और माँ बाप को सोचना पड़ता है। जो बहुत दूर बैठे हैं वो थोड़ा आगे आ जाएं, बस एक दो और सुनेंगे हम, क्योंकि फिर सेशन का भी टाइम है।
ओम शांति।
ओम शांति।
जो आप बोलते हो मैं उसको सही मानता हूँ कि आप जो हमें समझा रहे हैं वो सही है। मैं आपको और आपके विचार को सही मानता हूँ, फिर भी ये चीजें मेरे जीवन में क्यों नहीं आती?
वो तो हमारे पास पावर की कमी है, हम सही क्या है गलत क्या है ये जानते हैं, लेकिन फिर भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो मनोबल नहीं है हमारे पास, वो दृढ़ता नहीं है।
ओम शांति। शरीर में जब किसी प्रकार का भयंकर रोग हो जाता है।
ठीक है, रोग रिपीट मत करिए जो एक बार किसी ने कह दिया।
अच्छा,
तो अभी ठीक है, कॉमन प्रॉब्लम्स हमने समझी जो आप सुना रहे थे, अभी हम देखते हैं। ले लीजिए माइक, ले लीजिए, बस ये लास्ट। हाँ,
ओम शांति।
ओम शांति।
ये शुगर के वास्ते हमको साइड का प्रॉब्लम आया है,
वही हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज की बात है। ठीक है,
ओके
ओके, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, होम्स इन राहे, ये दो अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये पाया कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं परिवर्तन लाती हैं वो तनाव का कारण बनती हैं। वो खुशी की घटना भी हो सकती है अगर उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है तो। तो आप सबने जो शेयर किया वो धीरे धीरे हम वो सब देखेंगे। तो फैमिली लाइफ में बच्चे, जो बताया कि बच्चों के कारण, अगर बच्चे आज्ञाकारी नहीं हैं, बच्चे गलत संग में पड़ जाते हैं, गलत आदतों में चले जाते हैं, तो माँ बाप को तनाव होता है और माँ बाप की अपेक्षाएं होती हैं। जो भविष्य की बात की कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, यानी कोई अच्छा कैरियर बनाए अपना, लेकिन बच्चे की रुचि ही नहीं है जो आप चाहते हैं, या वो योग्य ही नहीं है। अगर वो योग्य है तो जरूर आपकी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, पर अगर वो योग्य ही नहीं है तो फिर बच्चों पर दबाव पड़ता है। तो ये देखने में आता है कई बार कि एग्जाम के रिजल्ट्स आते हैं और कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। यहाँ पर राजस्थान में कोटा शहर है जो कोचिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और हर साल एग्जाम के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिजल्ट्स के बाद यहाँ सुसाइड्स होते हैं। इस साल भी अब तक 15 सुसाइड हो चुके हैं, और एक लड़के ने अपने सुसाइड नोट में लिखा जो न्यूज़पेपर में आया था, वो तीसरी बार नीट के एग्जाम में फेल हो गया।
तो उसने लिखा, पिताजी मैं इस बार भी पास नहीं कर पाया, बस इतना ही लिखा उसने और फिर उसने सुसाइड कर लिया। तो बच्चे जो हैं वो भावनात्मक रूप से इतने परिपक्व नहीं होते हैं और इसीलिए जब उन पर दबाव आता है तो फिर वो ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं। तो यहाँ माँ बाप को सोचना होगा कि हमारा बच्चा किस योग्य है, वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और अगर नहीं कर सकता है तो उसकी जिसमें रुचि है उस अनुसार ही फिर वो उनको मार्गदर्शन दे, उसी दिशा में उसको प्रोत्साहित करें, तो फिर ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। डाइवोर्स एंड सेपरेशन, फैमिली लाइफ में ये भी देखने में आता है कि पति पत्नी के बीच अहम का टकराव होता है, दोनों साथ में नहीं रह सकते, अलग रहने लगते हैं, तो स्थिति अगर तलाक तक पहुंच जाती है तो ये दो परिवारों के लिए बहुत स्ट्रेसफुल होता है। आजकल पश्चिमी देशों में तो तलाक होते ही हैं, लेकिन भारत में भी ये तलाक की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मैरिज वैसे खुशी का अवसर है, लेकिन इसमें भी तनाव हो सकता है। जैसे कहा, अगर कोई परिवर्तन आ रहा है हमारी जिंदगी में, तो एक जोक से हम इसको स्पष्ट करेंगे कि एक बार एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने लॉटरी का टिकट खरीदा, वो 1 करोड़ की लॉटरी का टिकट था, और उन्होंने अपनी पत्नी का नंबर दिया और उनकी लॉटरी लग गई। तो पत्नी को न्यूज़ मिली क्योंकि पत्नी का नंबर दिया था। अब पत्नी ने सोचा, मेरे पति हार्ट पेशेंट हैं, मेरे को सीधा नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनके ज़माने में वो 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम थी। तो उसने पहले अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल किया कि ऐसा ऐसा है, तो फैमिली डॉक्टर ने बोला कि आप उसको मेरे पास भेज दो, मैं समझा दूंगा। तो गए फैमिली डॉक्टर के पास, उन्होंने पहले हेल्थ की बात की, फिर थोड़ा समाचार की बात की, और फिर कहा, अगर आपको 10 लाख की लॉटरी लग जाए तो क्या करोगे? कहा, 10 लाख की लॉटरी मिलेगी डॉक्टर, तो मुझे एक गाड़ी की ज़रूरत है, मैं गाड़ी ले लूँगा। फिर डॉक्टर ने कहा, अच्छा अगर आपको 50 लाख की लॉटरी लग जाए तो क्या करोगे? कहा, घर ले लूँगा, अभी रेंट पर रहता हूँ, एक घर ले लूँगा। फिर डॉक्टर ने कहा, आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, क्या करोगे? तो कहा, डॉक्टर क्यों मजाक करते हैं, मैंने ज़रूर 1 करोड़ की लॉटरी का टिकट लिया था, लेकिन इतना भाग्य नहीं है मेरा कि वो लॉटरी लग जाए। तो उसने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगी, आप क्या करोगे? तो कहा, डॉक्टर अगर ये सच है तो फिर मैं पहले 50 लाख आपको दे दूंगा। वो डॉक्टर को हार्ट अटैक हो गया। हाँ, तो यहाँ भी ऐसा होता है, जो माता पिता हैं जिन्हें अपने बच्चों की शादी करनी होती है, उसमें कई प्रबंध होते हैं, हाँ उसमें कई समस्याएं हो सकती हैं, धन की समस्या हो सकती है, आज तक भी हमारे समाज में दहेज चलता है, या ससुराल पक्ष वालों के व्यवहार की समस्या हो सकती है, फिर जिनकी शादी होती है उनके लिए नए लोग, नया वातावरण, उसमें एडजस्ट करना पड़ता है, तो खुशी के साथ साथ तनाव भी होता है। परिवार में किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई, असमय मृत्यु हो गई, तो वो भी बहुत तनाव पैदा करती है। फिर धन की बात, आज धन जरा भी ऊपर नीचे हो जाए, अगर जरा भी घाटा हो जाता है तो व्यक्ति बहुत तनाव से गुजरता है, क्योंकि हम धन को सब कुछ मानते हैं। आज मनी इज पावर, लोग भाग दौड़ की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि वो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहते हैं। पहले कहते थे, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया, और आज उल्टा है, धन गया तो सब कुछ गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो कुछ नहीं गया। यानी लोग धन कमाने के लिए अपने चरित्र की परवाह भी नहीं करते हैं, अपने संबंधों की परवाह नहीं करते, अपने मूल्यों की परवाह नहीं करते। समाज में हम देखते हैं कि धन संपत्ति के बंटवारे में थोड़ा कम ज्यादा हो जाए तो भाई भाई के दुश्मन हो जाते हैं, घरों में दीवारें खड़ी हो जाती हैं, यहाँ तक कि बेटा बाप का भी दुश्मन हो जाता है। हाँ, एक खबर थी ऐसे ही समाचार पत्रों में, ऐसे समाचार होते हैं, तो कुछ समय पहले एक समाचार था कि एक गांव में एक पिता ने अपनी जमीन बेची, कुछ लाख में वो खेती की जमीन बिकी उसकी, और उसके दो बेटे थे। तो दोनों बेटे चाहते थे कि पिता वो पैसा हमें दे दे, लेकिन पिता ने नहीं दिया, जो भी कारण रहा होगा नहीं दिया। अब वो दोनों बेटों ने मिलकर के प्लान बनाया और अपने पिता की ही हत्या कर दी। तो देखो, धन व्यक्ति को कहाँ तक ले जाता है, तो संबंधों की भी परवाह नहीं, लेकिन धन हमारी जिंदगी में आवश्यक है जरूर, पर सब कुछ नहीं है। धन से आप किताबें खरीद सकते हैं, ज्ञान खरीद सकते हैं, धन से आप दवाइयां खरीद सकते हैं, स्वास्थ्य खरीद सकते हैं, धन से आप बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद खरीद सकते हैं, नहीं ना? तो कुछ बातें ऐसी हैं जो धन से हम कभी भी नहीं ला सकते। तो धन हमें जरूर कमाना चाहिए, लेकिन सच्चाई ईमानदारी से कमाया हुआ धन व्यक्ति के जीवन में सुख शांति लाता है। और अगर हमने गलत तरीके से धन कमाया तो फिर गवर्नमेंट की भी नजर रहती है उसके ऊपर, चोरों की भी नजर रहती है, फिर उसकी चिंता लग जाती है, अब इसको कैसे बचाएं। तो दोनों तरह से ही धन तनाव पैदा कर रहे हैं ना, ज्यादा धन है तो भी टेंशन में, और कम धन है, गरीब है तो भी टेंशन में। तो कितना धन होना चाहिए? जितना आवश्यक है उतना ही हमारे पास धन होना चाहिए। उससे ज्यादा धन होगा तो टेंशन पैदा करना शुरू कर देगा। फिर कार्यस्थल पर हम काफी समय बिताते हैं, 8 घंटा हमारा वर्क प्लेस पर जाता है, और वहां भी कोई ना कोई समस्याएं आती हैं। जैसे हमारे अधिकारी, कोई ना कोई बॉस तो होते हैं, और अगर वो कठोर स्वभाव के हैं, आप सारा दिन मेहनत करते हैं, उसकी तारीफ तो आपको नहीं मिलती, लेकिन अगर थोड़ी सी गलती हो जाती है, कोई भूल हो जाती है, तो 4 लोगों के सामने आपको अपमानित कर देते हैं। तो फिर ऐसे अधिकारी से तनाव होता है। साथी जिनके साथ हम काम करते हैं उनके साथ कंपटीशन रहता है। अगर वो हेल्दी कंपटीशन है तो हम प्रोग्रेस करते हैं, पर अगर अनहेल्दी कंपटीशन है, यानी उसमें ईर्ष्या है, घृणा है, तो फिर उसका हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है। ऐसा कंपटीशन हमें नहीं करना चाहिए। फिर जो भी हमारे साथी हैं उनके साथ अगर हमारे विचार नहीं मिलते, अब काम हमें उनके साथ ही करना है, फिर उनका सहयोग हमें नहीं मिलता, तो ऐसा वातावरण भी तनाव पैदा करता है। कई बार हम प्रमोशन चाहते हैं, लेकिन प्रमोशन की बजाय और ही डिमोशन हो जाता है, क्योंकि हमारा कोई पिछला रिकॉर्ड ऐसा है या कोई गलती ऐसे हो जाती है कि नौकरी से ही बिठा देते हैं, सस्पेंड ही कर देते हैं। कई बार ये भी स्थितियां पैदा हो जाती हैं, तो क्या होता है, लॉस ऑफ स्टेटस इज मोर स्ट्रेसफुल देन लॉस ऑफ मनी एंड कम्फर्ट्स, क्योंकि इसमें व्यक्ति की बदनामी होती है, और इसीलिए वो उसके लिए बहुत तनावपूर्ण होता है। बहुत अधिक हम काम करते हैं तो सोचते हैं हमें अपने लिए टाइम नहीं मिलता, अपने परिवार के लिए टाइम नहीं मिलता, तो स्ट्रेस पैदा होता है। अगर वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, जहां हम काम करते हैं वहां पर पर्याप्त स्टाफ नहीं है, सुविधाएं नहीं है, बहुत पोल्यूशन है, नॉइसेस हैं, मशीनें चलती हैं, उसकी आवाजें होती हैं, या बहुत ट्रैफिक है, ऐसे कई कारण बनते हैं वर्क प्लेस पर जो हमें तनाव पैदा करते हैं। फिर ओवर क्वालिफाइड हैं, पढ़ लिख तो गए लेकिन जैसा जॉब चाहते हैं वैसा मिलता नहीं, तो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो ये देखा गया 40% एम्प्लॉयज को जॉब स्ट्रेस होता है। एक स्टडी की गई येल यूनिवर्सिटी के द्वारा कि 40% एम्प्लॉयज जो हैं वो स्ट्रेस में रहते हैं, और फिर जब उनके स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, दूर करने के लिए उचित कदम उठाए गए, तो ये देखा गया कि उनके कंपनसेशन क्लेम में 70% तक कमी आ गई। इतना फर्क पड़ जाता है, क्योंकि वो फिर क्लेम करते हैं ना, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं तो क्लेम करते हैं, लेकिन जब उनका स्ट्रेस मैनेज किया गया तो उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स में भी कमी आ गई, तो क्लेम में भी कमी आ गई। कुछ तनाव के बारे में भ्रम है। क्या भ्रम है? कि अगर हम जीवन में सफल होना चाहते हैं या हम बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ तनाव तो होगा ही, बिना तनाव के ये संभव नहीं है। क्या कहेंगे, सही है या गलत है? जो समझते हैं सही है वो हाथ उठाइए। अच्छा, जो समझते हैं गलत है वो हाथ उठाइए। अच्छा अच्छा, लगभग बराबर ही है, बाकी सब न्यूट्रल है। हाँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ ग्राफ में कि जब हम तनाव में काम करते हैं तब शुरू में हमारी परफॉर्मेंस बढ़ती है, क्योंकि हमारे शरीर में कैटाकोलामिन्स बनते हैं जो हमारे सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं और हमें लगता है कि हमारी क्षमता बढ़ गई। लेकिन थोड़े समय के बाद ये हमारे शरीर में स्टेरॉइड्स रिलीज होते हैं और वो हमें थकाते हैं और हमारी कार्य क्षमता कम होने लगती है। तो वास्तव में तनाव से हमारी कार्य क्षमता कम होती है। तो कई लोग क्या है, तनाव में काम करते हैं और सफल भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते। 35-40 साल तक आते आते वो जो पद पाना चाहते हैं पा लेते हैं, जितना धन कमाना चाहते हैं वो भी उन्हें हासिल हो जाता है, जो नाम कमाना चाहते हैं वो भी कमाते हैं। लेकिन अब हेल्थ चेकअप करने जाएंगे तो क्या होगा, कोई ना कोई बीमारी शरीर में शुरू हो चुकी होती है। फिर चाहे वो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, या हार्ट की बीमारी है, जैसे बताया, जो भी साइकोसोमैटिक बीमारियां हैं, कोई ना कोई बीमारी शुरू हो गई। और ये बीमारियां कैसी हैं, ये सिर्फ कंट्रोलेबल हैं, यानी एक बार होने के बाद आपको दवाई खानी है जब तक आप जिएंगे। दे आर नॉट क्यूरेबल, कि एक बार उसका निदान हो गया, इलाज हो गया तो फिर आपके लिए बीमारी खत्म, ऐसा नहीं होता है। फिर जब तक जीना है तब तक दवाई खाना है। तो अपने आधी उम्र तो कमा लिया, अब जितने भी साल आप जीने वाले हैं क्या होगा, दवाई खाते रहना है, यानी खर्च करते रहना है उसके लिए। तो जरूरी नहीं है कि हम तनाव से ही सफल होते हैं, लेकिन अगर हम लगन से काम करते हैं, अगर हम हिम्मत उत्साह मनोबल से इच्छा शक्ति से काम करते हैं तो भी हम सफल होते हैं, और उसका हमारे शरीर पर कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होता है। तो इसीलिए ये गलत फहमी है कि तनाव से ही हम सफल होंगे। फिर लोग अपने तनाव के लिए किसको जिम्मेवार ठहराते हैं, किसको जिम्मेवार ठहराते हैं? अभी हमने आपसे पूछा ना, तो कोई ये नहीं कहेगा कि मैं अपने तनाव के लिए खुद जिम्मेवार हूँ। हम क्या कहेंगे, इसके कारण है ना। तो जैसे सर्वे किया गया, एक जैसे हमने आपसे पूछा, तो 400 लोगों से पूछा गया आपके तनाव का कारण क्या है, तो सभी ने कहा कि लोगों के कारण या परिस्थितियों के कारण हमें तनाव होता है। तो उसमें एक सास थी जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था, तो उसको पूछा गया आपका ब्लड प्रेशर क्यों हाई हो जाता है, तो उसने क्या जवाब दिया होगा, क्या जवाब दिया होगा, मेरी बहू के कारण, मैं जैसा चाहती हूँ वैसा नहीं करती है और ही मेरा वो सामना करती है, इसीलिए मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। उसकी बहू को पूछा गया ना, उसको सिर दर्द हो जाता था, तो आपको सिर दर्द क्यों हो जाता है, तो उसने कहा मेरी सास के कारण, ये मेरे हर काम में गलती निकालती है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए मेरे को सिर दर्द हो जाता है। ऐसे ही वर्क प्लेस पर पूछा गया मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट ने क्या, मैनेजमेंट को जब पूछा तो उन्होंने कहा कि जो वर्कर्स हैं आजकल उनसे काम कराना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनकी मांगे बहुत ज्यादा होती हैं और अगर वो मांगे पूरी नहीं करो तो वो यूनियन बनाते हैं, हड़ताल करते हैं। सचमुच कितना मुश्किल है आज लोगों से काम लेना। और फिर जब वर्कर्स को पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, मैनेजमेंट के कारण, मैनेजमेंट हमसे काम तो बहुत लेती है लेकिन जो वेतन और सुविधाएं हमें देना चाहिए वो नहीं मिलता है। बच्चों को पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, माँ बाप के कारण, हमारे माँ बाप हमको समझ ही नहीं सकते। और जब माँ बाप को पूछा गया तो उन्होंने कहा बच्चों के कारण, क्योंकि बच्चे हमें कुछ समझते ही नहीं है। तो हरेक की उंगली किसकी ओर है, किसकी ओर है, दूसरे की ओर। अगर एक उंगली हम दूसरे की ओर करते हैं तो तीन उंगली कहाँ आ गई, मेरी ओर। अगर एक कमी दूसरे में है तो पहले तीन कमी किस में है, तो किसको पहले बदलना चाहिए। और हम क्या सोचते हैं, मैं बिल्कुल राइट हूं, मुझे बदलने की जरूरत नहीं, इसको बदलना चाहिए। और वो क्या सोच रहे होते हैं, वो भी यही सोच रहे होते हैं, मैं बिल्कुल सही हूं, इनको बदलना चाहिए। और ना वो बदलते हैं ना हम बदलते हैं, हमारी समस्याएं जीवन में बढ़ती जाती हैं। तो यहां स्पिरिचुअलिटी हमको ये सिखाती है, सेल्फ चेंज लीड्स टू वर्ल्ड चेंज। हम बदलेंगे तो हम दूसरों को बदल सकेंगे, अगर हम नहीं बदलेंगे तो कोई भी बदलने वाला नहीं है। एक बार ऐसे ही एक समुंदर में जहाज जा रहा था, वो बैटल शिप था, लड़ाई का जहाज था। तो समुद्र में थोड़ा तूफान आया तो जहाज हिलता है तूफान के कारण। तो जब तूफान शांत हुआ तो कैप्टन ने सीमैन को बोला कि तुम जाकर डेक पर देखो हमारे जहाज की दिशा ठीक है, कहीं जहाज की दिशा बदल तो नहीं गई। तो गया तो देखा जहाज तो सही दिशा में जा रहा है, लेकिन हमारे ही जहाज की दिशा में एक लाइट है। तो थोड़ा अंधेरा था तो समझ में नहीं आ रहा था, तो उसको लाइट दिखी तो उसने कैप्टन को मैसेज दिया, कैप्टन हमारे जहाज के सामने एक लाइट है। तो कैप्टन ने कहा कि हो सकता है कोई दूसरा जहाज आ रहा होगा, आप उसको कहो अपने जहाज की दिशा को 20 डिग्री बदल दो। तो उसने मैसेज पास किया कि आप अपने जहाज की दिशा को, तो उसने कहा वहां से मैसेज आया कि आप अपने जहाज की दिशा को 20 डिग्री बदल दो। तो अब उसने कैप्टन को बोला, कैप्टन उधर से मैसेज आ रहा है आप बदल दो। तो कैप्टन ने कहा उसको बोलो कैप्टन सो एंड सो स्पीकिंग, मैं फलाना कैप्टन बोल रहा हूँ, आप अपने जहाज की दिशा को 20 डिग्री बदल दो। उधर से मैसेज आया, मैं सेकंड क्लास सीमैन बोल रहा हूँ, आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी दिशा को 20 डिग्री बदल दो। ना अभी वो कैप्टन को गुस्सा आ गया, उसने कहा उसको बोलो ये बैटल शिप है, ये लड़ाई का जहाज है, ये अपनी दिशा नहीं बदलेगा, आपको ही अपनी दिशा बदलनी है। तो उधर से क्या मैसेज आया, मैं लाइट हाउस हूं, मैं अपनी दिशा कैसे बदल सकता हूं। तो जब उसको समझ में आया कि भाई ये लाइट हाउस नहीं बदल सकता, तो उसने फिर अपनी दिशा को बदला। तो पूरी कोशिश में हम लगे रहते हैं कि दूसरा बदल जाए, लेकिन जब पता चलता है कि वो बदलेगा नहीं, हमारी लाइफ यानी दूसरों की लाइफ हमारे कंट्रोल में होती है क्या, होती है, हमारी ही लाइफ को हम कंट्रोल कर लें उतना ही बहुत है, तो दूसरों को हम नहीं बदल सकते। फिर कई बार हम काम के लिए कहते हैं, इतना काम, इतना व्यस्त रहते हैं हम, तो तनाव होता है, लेकिन वास्तव में व्यक्ति को काम से तनाव नहीं होता, लेकिन जिस स्थिति से, या हम कहेंगे कि जिस भावना से हम काम करते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मानो हम अपने काम को पसंद करते हैं, अपने काम को हम दिल से करते हैं, प्यार से करते हैं, तो वही काम हमें खुशी देता है। और जो काम मुझे पसंद नहीं और मुझे करना पड़ता है, या मजबूरी से हम करते हैं उसे, तो वो काम मुझे कुछ घंटे में ही थका देता है। तो हम ये देखें कि वो काम मुझे पसंद है या नहीं। फिर उसमें दो तरीके हो सकते हैं कि अगर हम काम को बदल सकते हैं, जो काम मुझे पसंद नहीं, मुझे नहीं करना, तो हम छोड़ दें। तो अगर हम छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें, पर अगर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये हमेशा हमारे हाथ में तो नहीं होता है, मानो कोई ऐसा जॉब कर रहा है पर इतना जल्दी जॉब दूसरी मिलेगी भी नहीं, तो देन लर्न टू लव योर वर्क। फिर जो भी काम हम कर रहे हैं उसे हम दिल से करना सीख लें, अपना दिल लगाएं उसके अंदर, तो हमें वो काम तनाव नहीं देगा। फिर भी अगर बहुत अधिक काम है मानो, तो हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रायोरिटी बेसिस पर हम करें, यानी जो इम्पोर्टेंट काम है, अर्जेंट काम है, उन्हें पहले कर लें, जो लेस इम्पोर्टेंट है उन्हें हम बाद में भी कर सकते हैं, और जो लीस्ट हैं उन्हें हम पोस्टपोन भी कर सकते हैं, और चाहिए तो हम किसी का सहयोग भी ले सकते हैं। अगर हमें लगता है हमारे अकेले के लिए काम बहुत ज़्यादा है तो किसी को हम साथी भी बना सकते हैं उस काम के लिए। पर आजकल जो कॉरपोरेट्स होते हैं वो डेडलाइंस देते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट के लिए एक समय सीमा तय कर देते हैं, और वो काम ज़्यादा होता है समय कम होता है तो एम्प्लॉयज पर प्रेशर आता है, क्योंकि कंपनी तो लॉस नहीं चाहती है, वो सोचती है समय से पहले काम पूरा होगा तो ही हमें प्रॉफिट होगा। तो ये जो प्रेशर है कई बार ये हमारी क्षमता को और बढ़ाने वाला होता है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल के रूप में, एक बार एक बिजनेसमैन थे और उनकी उम्र हो रही थी और उनको कोई वारिस नहीं था, बेटा नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि ये सही समय है, मुझे एक पार्टनर बना लेना चाहिए। तो उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दिया और वो एडवर्टाइजमेंट क्या था कि मेरे घर के सामने जो स्विमिंग पूल है उसे जो एक कोने से दूसरे कोने तक पार करेगा उसे 1,00,000 का इनाम दिया जाएगा और वो मेरे बिजनेस का पार्टनर भी होगा। और वो उन्होंने उम्र वगैरह सब लिखी थी, उसके अनुसार काफ़ी युवक आ गए क्योंकि ये तो कोई मुश्किल शर्त नहीं थी। पर देखा कि वो जो स्विमिंग पूल है उसके अंदर सांप है, तो सब देख रहे थे, कोई कूद नहीं रहा था क्योंकि हर एक को सांप से डर लगता है, लेकिन एक युवक ने छलांग लगाई और किसी तरह से सांपों से अपने को बचाते हुए वो दूसरे किनारे पर बाहर आ गया, और वहाँ ही वो बिजनेसमैन खड़े थे तो उन्होंने उसको शाबाशी दी, कहा शाबाश बेटा, मैं तुम्हारे ही जैसा साहसी युवक चाहता था और तुमने मेरी शर्त को पूरा किया है, इसीलिए तुम्हें 1,00,000 का इनाम मिलेगा और मेरे बिजनेस की पार्टनरशिप भी। उसने कहा मुझे न तो 1,00,000 का इनाम चाहिए न आपके बिजनेस की पार्टनरशिप चाहिए, पहले मुझे उसे ढूंढने दो जिसने मुझे इस पूल में धक्का दिया। तो लेकिन उस धक्के ने क्या करा दिया, उससे वो करा दिया जो वो सोचता था वो नहीं कर सकता। तो जीवन में जब चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं तब हमारी क्षमता बढ़ती है, तब हमें समझ में आता है कि हमारे अंदर इतनी शक्ति भी है। तो इसीलिए हमेशा हम चैलेंजेस को पॉजिटिव लें। कहने का भाव ये कि अगर थोड़े बहुत प्रेशर्स आते भी हैं लाइफ में तो वो हमें अनुभवी बनाते हैं, वो हमें आगे बढ़ाते हैं। फिर हम अपने तनाव को कम करने के लिए क्या करते हैं, क्या तरीके अपनाते हैं? कुछ ना कुछ तो हम करते ही हैं जब हमें लगता है कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है। पहले तो हम अपने को ये पहचाने कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है। हमें स्ट्रेस पहचानने के लिए डॉक्टर की ज़रूरत तो नहीं है ना कि डॉक्टर डायग्नोस करेगा मुझे स्ट्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या कहेंगे, पता चलता है नहीं चलता? जो समझते हैं पता चलता है वो हाथ उठाइए। मेजॉरिटी को पता चलता है कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है। तो हम उस समय मनोरंजन के साधन अपनाते हैं कि हम किसी तरह से रिलैक्स हो जाएं। तो क्या करते हैं लोग, पार्टीज में जाते हैं, क्लब्स में जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ हॉलीडे या बातें करना, या फिर ना आजकल लाफिंग क्लब्स भी होते हैं बड़े बड़े शहरों में, और फिर सिनेमा देखना, म्यूजिक सुनना। कुछ लोग जो हैं वो ये जैसे कहा नशा करते हैं ना, शराब पीना, सिगरेट पीना, इसका भी सहारा लेते हैं। कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं जैसे जॉगिंग करना, योगा करना, हर एक का अपना अपना तरीका है। और ये जो भी साधन हम अपनाते हैं ये हमारे तनाव को थोड़े समय के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। यानी जब हम मनोरंजन कर रहे हैं हमें लगता है हम बिल्कुल रिलैक्स हैं, हमारा तनाव बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन थोड़े समय के बाद जब समस्या फिर से हमारे सामने होती है, फिर हम तनाव का अनुभव करने लगते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि हमने उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दिया. तो दिस इज नॉट द रियल रेमेडी फॉर स्ट्रेस. उसके लिए हमें ये समझना होगा कि तनाव का मूल कारण क्या है. तो क्या है तनाव का मूल कारण? तनाव का मूल कारण है कि किसी भी परिस्थिति में हम किस दिशा में सोचते हैं वैसा ही हम महसूस करते हैं. आपने पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर पूरा सेशन सुना है आज, तो कैसे कैसे हम सोचते हैं, है ना, ये समझा ना, क्या क्या हमारे विचार चलते हैं. तो हम किसी भी परिस्थिति में नेगेटिव भी सोच सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में हम पॉजिटिव भी सोच सकते हैं. किसकी चॉइस है ये? किसकी चॉइस है? हमारी चॉइस है ना. तो लेकिन ज्यादातर क्या होता है, जब ऐसी परिस्थितियां जो तनाव पैदा करती हैं आती हैं, तो हम नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि नेगेटिव सोचना आसान होता है. तो हम सोचते हैं, अरे इसमें मेरा क्या बुरा हो जाएगा, मेरी क्या हानि हो जाएगी, क्या होगा, कैसे होगा. तो हमारी फीलिंग्स क्या होती हैं, नेगेटिव सोचने की फीलिंग्स होती हैं पैनिक, फियर एंड वरी. हम भय और चिंता, तनाव का अनुभव करते हैं, और वैसा ही फिर हमारा बिहेवियर हो जाता है, और उसका असर हमारे काम पर भी पड़ता है. लेकिन अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारी फीलिंग्स क्या होती हैं? तब हमारी फीलिंग्स होती हैं कॉन्फिडेंस, पीस एंड करेज. हमको परिस्थिति बड़ी नहीं लगती है, और फिर हमारा काम भी उसी तरह से हम करते हैं. मानो फॉर एन एग्जाम्पल, कैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव सोचते हैं और फील करते हैं. एक बार ऐसे एक जर्नलिस्ट थे, और वो अपने बीते साल के बारे में लिखा उन्होंने कि मेरा जो पिछला साल था वो बहुत बुरा रहा. क्या बुरा रहा? मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, उसका एक साल बर्बाद हो गया, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, मेरा ऑपरेशन हुआ और मुझे कई दिनों तक बिस्तर पर रहना पड़ा, और मैं रिटायर भी हो गया. तो उनकी जो पत्नी थी वो आई और उन्होंने पढ़ा ये, तो उन्होंने कहा मैं भी लिखती हूँ. तो उसने पन्ना पलटा और फिर उसने लिखा कि बीते साल भगवान की हमारे ऊपर कृपा रही. अब क्या कृपा रही? कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, उसका एक साल बर्बाद हुआ, लेकिन मैं ईश्वर की शुक्रगुजार हूँ कि उसको नया जीवन मिला ना. एक्सीडेंट में मृत्यु भी हो सकती थी ना, तो पढ़ाई तो फिर भी हो जाएगी, लेकिन जीवन ज्यादा वैल्यूबल है. फिर उसने लिखा कि मेरे ससुर की मृत्यु हुई 90 साल की उम्र में, बिना किसी लंबी बीमारी के वो सहज भगवान के पास गए. फिर तीसरा उसने लिखा, मेरे पति का ऑपरेशन हुआ, बहुत समय से इनको दर्द रहता था, लेकिन ऑपरेशन के बाद हमेशा के लिए इनका दर्द चला गया है. फिर लिखा, मेरे पति अब रिटायर हो गए हैं, ये बहुत समय से एक किताब लिखना चाहते थे लेकिन इनको टाइम नहीं मिलता था, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद इनके पास पर्याप्त समय है और ये अपनी उस इच्छा को पूरा कर पाएंगे. तो वही बातें हैं, लेकिन उन्हीं बातों में उनके पति को बुरा लग रहा है, और उन्हीं बातों में उसे क्या महसूस हो रहा है? भगवान की कृपा. तो देखने का नजरिया वो पॉजिटिव नजरिए से देख रहे. कहते ना, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं. अगर किसी बात में हमारा कुछ बुरा होता है तो उसमें हमारा कुछ भला भी होता है, लेकिन हम किसको देख रहे हैं. तो जो नजरिया हम रखते हैं वैसा ही हम फिर महसूस करते हैं. मानो आप ट्रैफिक में हैं और कोई आपकी गाड़ी लगा देता है, तो हम दो तरह से रिस्पॉन्स कर सकते हैं. अगर हम नेगेटिव हैं तो हम क्या करेंगे? जिसने गाड़ी लगाई उसको गालियां देना शुरू करेंगे, उस पर गुस्सा करेंगे, और अगर वो हाथ में आ गया तो दो चार लगाने में भी देरी नहीं करेंगे, है ना. तो टेंशन पैदा रोड पर, इसको रोड रेज कहते हैं. अच्छा, अगर हम पॉजिटिव हैं तो ठीक है, हम समझते हैं इस बात को कि हम ट्रैफिक में हैं, ऐसा कभी हो जाता है. अब आगे से जब भी हम ट्रैफिक में होंगे, हम अपनी गाड़ी को और ध्यान से चलाएंगे और हम चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। तो स्थिति पैदा हुई, लेकिन मैंने किस तरह से सोचा उस अनुसार ही मेरा रिस्पॉन्स हुआ। तो एक जैसी स्थिति कई लोगों के सामने आती है, चार लोग एक जैसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, चारों का रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि चारों का सोचने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है। तो इसीलिए जब भी हम तनाव अनुभव करते हैं, हमें ये देखना है कि हम किस दिशा में सोच रहे हैं। जरूर हम नेगेटिव सोच रहे हैं तभी हमें स्ट्रेस हो रहा है, तो अपने विचारों में हम परिवर्तन लाएं, लेकिन ये कहना जितना आसान है उतना करना आसान नहीं है। मेरा ये हाथ है, इसको मुझे ऊपर करना है, नीचे करना है, आगे करना है, पीछे करना है, इजी है क्योंकि ये फिजिकल है, लेकिन मेरे मन को मुझे इसी दिशा में रखना है, यही मुझे सोचना है, ये नहीं सोचना है, ये इतना आसान नहीं, क्योंकि मन सूक्ष्म है, मन की गति बहुत तेज है। तो इसीलिए हमारे मन को हमें अभ्यास देना पड़ता है, और वो अभ्यास क्या है? वो अभ्यास है मेडिटेशन। जब हम योग अभ्यास करते हैं तो हम कॉन्शियसली अपने मन को पॉजिटिव सोचने की आदत डालते हैं, हम अपने मन को समय देते हैं। जैसे शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें समय देना पड़ता है शरीर को, है ना, एक्सरसाइज करेंगे, भोजन का ध्यान रखेंगे, अपनी नींद पूरी करेंगे, आराम पूरा मिलना चाहिए शरीर को, कई बातों का हम ध्यान रखते हैं। ऐसे ही मेरा मन स्वस्थ रहे उसके लिए भी हमें मन को थोड़ा समय तो देना होगा। तो रोज जब हम योग अभ्यास करते हैं तो हमारी सामर्थ्य बढ़ती है। हमने समझा स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर्स अपॉन कोपिंग एबिलिटी। तो प्रेशर्स को या तो हम कम कर दें, हमारे जीवन में कोई समस्या ही ना आए तो तनाव होगा ही नहीं, हो सकता है? हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है, कोई ना कोई समस्या हमारे जीवन में लगी ही रहती है। तो लेकिन हम कोपिंग एबिलिटी बढ़ा सकते हैं, समस्याओं को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उसके प्रति जो हमारी सामना करने की शक्ति है, उसके प्रति जो हमारा आत्मबल है, वो हम बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए जब हम योग अभ्यास करते हैं तो राजयोग में आप समझ रहे हैं, राजयोग के दो चरण हैं। पहला है आत्मचिंतन करना, यानी हम स्वयं को देखते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं। जैसे कहा कि सामान्यतः हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों की शिकायत करते हैं, लेकिन जब हम योग करते हैं तो हम अंतर्मुखी होते हैं और हम अपने आप को देखते हैं। और जब अपने को देखते हैं तो मेरी कमी कहाँ है वो मुझे समझ में आता है, फिर मुझे कहाँ परिवर्तन लाना है ये भी समझ में आता है। तो हमारी आधी समस्या तो वहीं खत्म हो जाती है। फिर आत्मचिंतन करते हुए हम आत्मा के गुणों में मन को स्थित करते हैं, क्योंकि आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, तो हमारे मन की स्थिति ही बदल जाती है और वो हमें तनाव कम करने में सहयोग मिलता है। और दूसरा, हम परमात्मा से संबंध का अनुभव करते हैं। जब हम योग करते हैं उसका दूसरा स्टेप है भगवान से संबंध का अनुभव करना, जो सर्वशक्तिवान है, शांति का सागर है। तो उससे मन जब जुड़ता है तो ईश्वरीय शक्तियां हमें मिलती हैं और हमारा मनोबल बढ़ जाता है, और इसीलिए बड़ी बात भी हमें छोटी लगती है। तो हम देखते हैं जितने भी आध्यात्मिक व्यक्ति संसार में हुए, ऐसा नहीं उनके जीवन में कठिनाइयां नहीं आई, एक आम व्यक्ति से कहीं ज्यादा उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसे महसूस नहीं किया क्योंकि वो आध्यात्मिक बल, ईश्वरीय बल उनके अंदर था। और ये साइंटिफिक स्टडीज में ये देखा गया कि जब हम योग अभ्यास करते हैं तब हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स बनते हैं। कौन से केमिकल्स बनते हैं? एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स एंड सेरोटोनिन्स, जो तनाव में केमिकल्स बनते हैं ये इसके ओपोजिट हैं, यानी ये हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल हैं। तो ये हमारी हार्ट रेट को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, रेस्पिरेटरी रेट स्लो डाउन हो जाती है, हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और पूरा सिस्टम एक बैलेंस में काम करने लगता है। तो हम तन से भी स्वस्थ होते हैं, मन से स्वस्थ होते हैं और फिर हमारा तन भी स्वस्थ होता है अगर हम रेगुलर मेडिटेशन करते हैं। इसीलिए योग को स्वास्थ्य से जोड़ा गया जो हम सुन रहे हैं। और अभी तो जून मास है तो वैसे भी 21 जून को हम योगा डे मनाते हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित है। अब हमारी चाहे पर्सनल लाइफ है या फैमिली लाइफ है या वर्क प्लेस की लाइफ है, ये तीन बातें हमारे सामने आती हैं, रोल्स, रूटीन्स एंड रिलेशनशिप। हम सभी कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे हैं, यानी हम सभी कोई ना कोई काम करते हैं और जो भी काम करते हैं उसका असर हमारे ऊपर होता है। मानो आप ऑफिसर हैं, आप ऑफिशियल बने रहते हैं जहां आप काम करते हैं क्योंकि लोगों से आपको काम करवाना है, लेकिन जब घर लौटकर आते हैं तब ऑफिसर नहीं है, हमारा रोल बदल जाता है क्योंकि घर में क्या है, पिता हैं, किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं या दोस्त हैं, तो दोस्तों के साथ दोस्त हैं, तो उन्हें क्या चाहिए हमसे, स्नेह चाहिए, अपनापन चाहिए। लेकिन हम अपने रोल से अपने को डिटैच नहीं कर पाते और घर में भी आकर ऑफिशियल बने रहते हैं, तो घर वालों को हमारा ये व्यवहार पसंद आएगा, नहीं आएगा ना। ऐसे ही मानो हम वर्कर हैं, काम करते हैं और कोई हमें कुछ कहता है तो हमें सुनना पड़ता है, जवाब नहीं दे सकते क्योंकि जवाब देंगे तो उसके रिजल्ट खराब हो सकते हैं, तो चुप रहते हैं। लेकिन घर लौटते हैं तो घर में जो भी फैमिली मेंबर हमारे सामने आएगा उसके ऊपर गुस्सा निकाल देते हैं, घर में तो निकाल सकते हैं, तो क्या कर रहे हैं, ऑफिस का टेंशन हम घर में लेके आ रहे हैं। कई घर का टेंशन कहाँ ले जाते हैं, ऑफिस में ले जाते हैं, तो कहाँ भी रिलैक्स नहीं है। इसका मतलब जहाँ हमारा जैसा रोल हमें प्ले करना चाहिए वैसा रोल हम प्ले नहीं कर पा रहे। तो यहाँ राजयोग में हम सीखते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। नॉर्मली हम अपने आप को ह्यूमन डूइंग समझते हैं, हम ह्यूमन डूइंग नहीं है, हम ह्यूमन बीइंग हैं। बीइंग माना मैं आत्मा हूँ, शरीर के द्वारा ये कर्म कर रही हूँ। तो जब ये सत्य हमें समझ में आता है तो अपने रोल से डिटैच होना हमारे लिए आसान हो जाता है और जहाँ हमारा जो जैसा रोल है वैसा रोल हम प्ले कर पाते हैं। एक बार एक स्थान पर रामलीला चल रही थी और वहाँ हनुमान का रोल प्ले करने वाला नहीं आया था, तो मैनेजर ने देखा कि काफी पब्लिक आ चुकी है और मुझे शुरू करवा देना चाहिए, तो उसने अपने एक वर्कर को बुलाया और कहा कि देखो पहला दृश्य है रावण की दरबार लगी हुई होगी और रावण तुमसे सवाल पूछेगा तुम कौन, तो तुम जवाब देना मैं श्री राम भक्त हनुमान, तो तुम हनुमान का ड्रेस पहनकर आ जाओ फिर बाद में हम संभाल लेंगे। उसने कहा ठीक है, उसने हनुमान का ड्रेस पहना और वो स्टेज पर आ गया, पर उसने पब्लिक को देखा, फिर रावण इतनी जोर से बोलता है क्योंकि उसका तो रोल ही है, तो वो एकदम चिल्ला के बोला तुम कौन, तो बेचारा घबरा गया, उसने कहा मैं रामलाल रिक्शा वाला। तो यहाँ भी ऐसा होता है कि जब हम टेंशन में होते हैं तो जैसे रोल हमें प्ले करना चाहिए वैसे हम नहीं कर पाते हैं। फिर हमारी दिनचर्या, हमारी दिनचर्या व्यवस्थित होनी चाहिए, समय से सोना, समय से उठना, समय से काम करना, भोजन करना, तो जितना हम व्यवस्थित चलते हैं उतना तनाव हमें नहीं होता। लेकिन आज की जीवन शैली क्या है, इसके बिल्कुल ओपोजिट है। सारा दिन हम काम करते हैं, घर लौटते हैं, रिलैक्स होना चाहते हैं, हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, मनोरंजन, चाहे वो टेलीविजन से करें चाहे हम मोबाइल से करें, है ना। तो रिलैक्स होने के लिए हम कोई ना कोई मीडिया में इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं बहन जी हम ज़्यादा कुछ नहीं देखते, हम सिर्फ न्यूज़ देखते हैं, तो क्या न्यूज देखने से हम रिलैक्स हो जाते हैं? न्यूज देखने से तनाव कम हो जाता है? एक भाई जी ने बोला वॉर। अब वॉर का कैसे पता चल रहा है? जब न्यूज देख रहे हैं। अब आप न्यूज में देखेंगे वो इतना वॉर दिखा देंगे आपको कि ना चाहते हुए भी आप कहां चले गए, युद्ध में चले गए। और कई कहते हैं नहीं हम बहन जी सिर्फ स्पोर्ट्स देखते हैं। अच्छा चलो आप स्पोर्ट्स देखते हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, आपकी मनपसंद टीम जीत रही है तो खुश और हार रही है तो उसके साथ साथ ही मेरा ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे, ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, वहां शुरू हो जाते हैं। और बहनें क्या देखती हैं? सीरियल। और वो सीरियल क्या हमें स्वस्थ मनोरंजन देते हैं और ही हमारी भावनाओं को दूषित करते हैं? और जो भी मीडिया के सामने होते हैं वो देर रात सोते हैं, चाहे मोबाइल आपके हाथ में है चाहे आप टेलीविजन के सामने हैं, रात को देर से सोते हैं। आजकल तो लोग 12 एक बजे से पहले सोते नहीं, तो उठेंगे कब? उठेंगे कब? 8 बजे, छुट्टी है तो 10 बजे, है ना? और जब देर से उठेंगे, कहावत है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। और लेट टू बेड लेट टू राइज क्या होने वाला है? सारी हेल्थ वेल्थ। आज हेल्थ, आज लोगों की हेल्थ की क्या दशा होने लगी है, कम उम्र में ही लोग बीमार होने लग गए। तो क्यों? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी है, हम अपने आप को टाइम ही नहीं दे सकते। आप 8 बजे उठेंगे, आपको टाइम पर ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, कम टाइम में सारे काम निपटाने हैं, दिन ही तनाव से शुरू होता है, हरी वरी एंड करी जिसको हम कहेंगे। फिर काम करना शुरू करते हैं, देखते हैं बहुत सारा काम है, कई काम एक साथ करना शुरू कर देते हैं, एक भी काम ठीक ढंग से हम कर नहीं पाते ना। सही तरीका क्या है? जो काम पहले हाथ में लिया है उसे पूरा करें, फिर उसके बाद हम दूसरा काम हाथ में लें। और कई लोग इसके ऑपोजिट होते हैं, काम करना ही नहीं चाहते, टाइम पास करते हैं ना, चाहे ऑफिस में जाते हैं या जहां भी जाते हैं, फिर गपशप मारना आपस में या जो भी, चाय पीना, सिगरेट पीना, और फिर पूरा दिन गुजर गया, हमने कुछ किया ही नहीं। फिर क्या कहते हैं, हमसे जो हो जाता है वो हम कर लेते हैं, बाकी तो हम तनाव मुक्त रहते हैं। तो तनाव मुक्त होने का ये मतलब नहीं हम आलसी हो जाएं, लेकिन जो भी हमारा कार्य है उसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से करें, हम एक्यूरेट एक्टिव अलर्ट रहें अपनी दिनचर्या के अंदर, तभी हम सफल होते हैं। तो हमारे रूटीन्स व्यवस्थित होने चाहिए, जो भी हमारी दिनचर्या है, हमारी जो बायोलॉजिकल रिदम है हमारी बॉडी की, उसको मेंटेन करें, ये हमें ध्यान रखना है। फिर हमारे संबंध हमारे जीवन में दो तरह से काम करते हैं। अगर हमारे संबंध अच्छे हैं तो फिर हमारा तनाव कम करते हैं, क्योंकि हम संबंधों में अपना सुख दुख बांट लेते हैं, अपने दिल की बात कहते हैं, हमारी जो प्रॉब्लम है वो हम सुनाते हैं, जो भी हमारे सहयोगी हैं, और फिर वो हमें सहयोग देते हैं या हमें वो हिम्मत देते हैं अपने अनुभव से, जो भी उनका तरीका होता है, तो हमें मदद मिल जाती है। एक ऐसे देखा गया एक स्टडी में, विदेशों में लोग पेट्स रखते हैं, पेट्स माना कुत्ता या बिल्ली, कुछ ना कुछ को पालते हैं वो, और फिर जो उनसे बातें करते हैं, स्टडी में देखा गया जो अपने पेट से बातें करते हैं उनको हार्ट की बीमारी कम होती है। तो स्टडी थी तो ये जानने की कोशिश की गई ऐसा क्यों, तो उनसे पूछा गया आप अपने पेट से क्यों बातें करते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं फैमिली है उनसे बातें करिए। तो उन्होंने कहा कि ये जो जानवर है ये चुपचाप सुनते हैं, इनका हमें नहीं सुनना पड़ता। अगर हम अपने फैमिली फ्रेंड से बात करेंगे तो उनका भी हमें सुनना पड़ेगा और हम सुनना नहीं चाहते। तो आज इंसान के पास दूसरों की बातें सुनने का टाइम ही नहीं है। तो फिर यहां आप सीख रहे हैं राजयोग में कि हम राजयोग में परमात्मा से दिल की बातें करते हैं, एंड ही इज वेरी साइलेंट लिसनर, है ना, वो चुपचाप सुनेंगे। भगवान हमें अपनी बात कहेगा क्या? वो तो चुपचाप हमारे दिल की बात जो भी हम सुनाएंगे सुनते भी हैं और फेथफुल भी हैं, और साथ में जो भी हमारी समस्या है उसके लिए वो हमें शक्ति भी दे देते हैं। इसीलिए ईश्वर के साथ भी हमारा संबंध महत्वपूर्ण है। तो हम कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करें, तो किसको याद कर रहे होते हैं दुख के समय? हम भगवान को ही याद कर रहे होते हैं। सब संबंध होते हुए भी उसको हम याद करते हैं, तो फिर क्यों ना सुख में भी हम उसे याद करें, ताकि वो स्थिति ही ना हो। लेकिन फिर भी संबंधों में क्या ऐसी नेगेटिव बातें आ जाती हैं जो तनाव पैदा करती हैं? तो उसमें है एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं रखना। खासकर समीप संबंधों में हम बहुत अपेक्षाएं रखते हैं। ये मेरी पत्नी है, इसको मेरे लिए ये सब करना ही चाहिए, वो करती है तो ठीक, और जिस दिन नहीं किया उस दिन नाराज होंगे, गुस्सा करेंगे, टेंशन पैदा करेंगे। मेरा बेटा है, इसको मेरा कहना मानना ही चाहिए। किसी दूसरे के बेटे को मैंने कोई बात कही और उसने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बेटे ने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे बहुत दुख होता है। क्यों? क्योंकि मेरा अधिकार समझते हैं हम उनके ऊपर। तो जो भी हमारे अपने भी हैं जिन्हें हम समझते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमारी अपेक्षाएं पूरा करेंगे, क्योंकि हर इंसान अलग है, हर इंसान की सोच अलग है। जैसा आप सोचते हैं जरूरी नहीं है वो भी वैसा सोच रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारे कर्तव्य हैं संबंधों में, जितना हम निस्वार्थ भाव से उनको पालन करेंगे, निस्वार्थ भाव से पालन करने का मतलब अपेक्षा नहीं रखना है, लेकिन जो हम उनके लिए कर सकते हैं करें। उसका फल मिलता है तो भी ठीक, नहीं मिलता है तो भी ठीक। एक बार एक भाई हमारे पास आए, उन्होंने कहा बहन जी मुझे हार्ट अटैक हुआ है, उसका कारण भी मुझे मालूम है कि मेरे जो माता पिता थे उनका बचपन में देहांत हो गया, अपने भाई बहनों की मैंने परवरिश की, उन्हें योग्य बनाया, आज वो सब अच्छा कमाते हैं। अब स्थिति ये है कि मुझे उनका सहयोग चाहिए, लेकिन वो मुझे सहयोग देना तो दूर, मेरा एहसान भी नहीं मानते कि मैंने उनके लिए कुछ किया, और मुझे बहुत दुख होता है। डॉक्टर कहता है आप सोचो मत, सोचेंगे तो आपको दोबारा हार्ट पर असर आ सकता है, तो फिर हमें हम क्या कहेंगे? सोचना चाहिए नहीं सोचना चाहिए? सोचना चाहिए नहीं सोचना चाहिए? क्या कहेंगे? नहीं सोचना चाहिए ना। ये कहना जितना आसान है, प्रैक्टिकल लाइफ में उतना ही मुश्किल। क्या सोचता है व्यक्ति? इनका टाइम था, मैंने इनके लिए इतना किया, आज जब हमारा समय आया, हमें इनकी मदद चाहिए, तो देखो तो हमें धोखा मिल रहा है। तो दुखी होते हैं कि देखो इंसान कैसे धोखा देता है। तो फिर जितना जो गीता सिखाती है, निष्काम भाव से अपना कर्म करना है। तो संबंधों में हम जितना निस्वार्थ रहेंगे, यानी देने की भावना रखेंगे लेने की बजाय, ज्यादा हम लेने की भावना रखते हैं, मुझे ये मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं, हम दूसरों के लिए जो सहयोगी बन सकते हैं, स्नेह दे सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं, वो हमें देना है, तो हम संबंधों में सुखी रहेंगे और हमें तनाव नहीं होगा। कई बार जेलसी ना, जैसे जेलसी, हेट्रेड, एंगर, ये भी हम संबंधों में करते हैं। हम देखते हैं मेरा साथी है उन्नति कर रहा है, हम वहीं के वहीं हैं, तो ईर्ष्या होने लगती है। कहते हैं चिंता चिता के समान है, तो ईर्ष्या भी अग्नि है जो मनुष्य को जलाती है। तो ईर्ष्या से हमें फायदा नहीं होता है और ही हमें नुकसान होता है। तो ईर्ष्या करने के बजाय जो भी उन्नति कर रहे हैं या जो भी सुखी हैं उनके प्रति और ही हमारी शुभ भावना हो, और अगर हमें उन्नति करनी है तो हम अपनी योग्यता को बढ़ाएं, अपनी गुणों का विकास करें, तो निश्चित रूप से हम भी जीवन में आगे बढ़ेंगे। और हर एक के अंदर कोई ना कोई विशेषता होती है ना, एवरी पर्सन इज ए यूनिक पर्सन। संसार में कोई भी दो लोग एक जैसे हैं ही नहीं, जैसे बताया आपको कि हर एक के कर्म और प्रारब्ध अपने अपने हैं। तो हमें भी कुछ भाग्य मिला है, किसी दूसरे को दूसरा भाग्य मिला है, तो हम अपने आप को देखें कि भगवान ने हमें क्या दिया है, हम वर्तमान में क्या है। तुलना करनी है तो अपने आप से करो कि कल हम कहाँ थे, आज हम कहाँ हैं, और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। दूसरों से तुलना करेंगे तो क्या होता है, एक कहावत है, योर कार डेप्रिशिएट्स फास्टर when your neighbor gets a new car. आपके पड़ोसी के पास नए मॉडल की गाड़ी आ गई तो आपको अपनी गाड़ी क्या लगने लगती है? पुरानी लगने लगती है. और इच्छा क्या पैदा हो जाती है? मुझे भी ऐसी गाड़ी चाहिए. जब हम दूसरों से तुलना करने जाते हैं तो फिर हम कभी भी जीवन में संतुष्ट और खुश नहीं रह सकते. तो अगर हम 3 A's का फॉर्मूला भी अपनाते हैं तो भी हम काफी हद तक अपने जीवन में तनाव मुक्त रह सकते हैं. एक्सेप्ट करना. जीवन में बहुत सारी बातें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो अगर हम उन्हें स्वीकार कर लें तो फिर हमें तनाव नहीं होता ना. मानो कोई हमारे साथी हैं, संबंधी हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, काम करते हैं, उनका स्वभाव हमारे से नहीं मिलता और हम कोशिश भी करते हैं उनको समझाने की, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं आता है. तो फिर वो जो हैं, जैसे हैं, उनको स्वीकार करें, समझ कर चलें, तो उनके साथ रहने में, काम करने में हमें तनाव नहीं होगा. नहीं तो हर दिन, अब हमने उनके साथ ही रहना है, हमको उनके साथ ही काम करना है, तो हर दिन क्या होगा? हर दिन वो तनाव की स्थिति से हम गुजरेंगे तो उसका असर हमारे स्वास्थ्य पर आएगा. तो फिर उनको स्वीकार करना. या कोई अचानक ऐसी आपदा आ जाती है, जिंदगी में अचानक कई घटनाएं होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो उसको अगर हम स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब भविष्य में क्या सावधानी रखनी है या इसका क्या समाधान हो सकता है, वो हम सोचें. कुछ बातों में हम परिवर्तन ला सकते हैं, और वो कहाँ ला सकते हैं? अपने आप में. अपने आप को हम देखते हैं कि यदि मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, मुझे जल्दी ईर्ष्या हो जाती है, या मुझे जल्दी तनाव हो जाता है, मेरी सेंसिटिव नेचर है, मुझे जल्दी फीलिंग आ जाती है, तो हम अपने आप को बदल सकते हैं. हो सकता है उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़े, कुछ समय भी हमें लग सकता है, है ना. आप यहाँ सीख रहे हैं राजयोग जो हमें परिवर्तन करता है, तो कोई भी ऐसी विद्या जो हमारे को परिवर्तन कर सकती है उसे हम अपनाएं. तो हम परिवर्तन होते हैं तो हमारे जीवन की आधी से ज्यादा समस्याएं ऐसे ही समाप्त हो जाती हैं. कुछ बातों को हमें अवॉइड करना पड़ता है. अवॉइड करना माना ध्यान नहीं देना. जैसे कहा, आज दुनिया क्या है? ग्लोबल विलेज है. दुनिया के दूसरे कोने में क्या हो रहा है, मेरे मोबाइल में 1 मिनट में आ जाएगा, और उसको हम देखते हैं, सुनते हैं, तो हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं. तो या तो हम उसे देखें और सुने ही नहीं, क्योंकि हम घर बैठे क्या कर सकते हैं ना, हम कुछ नहीं कर सकते. अगर कर सकते हैं तो करिए. मानो वो युद्ध चल रहा है वहां पर, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में अभी हुआ, तो अभी हम घर बैठे क्या कर सकते हैं? वो काम तो मिलिट्री का है ना. तो अगर हम नहीं कर सकते तो फिर ध्यान नहीं दें, और अगर कर सकते हैं तो जरूर करिए. तो जो हम नहीं कर सकते उसे हमें देखते हुए भी नहीं देखना और सुनते हुए भी नहीं सुनना है. हमारे घर के आसपास भी ऐसी कई घटनाएं होती हैं जो अशांति पैदा करने वाली होती हैं, लेकिन अगर उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं तो फिर उसे हमें ध्यान नहीं देना. यानी हम साक्षी होकर के उसे देखें एज ए डिटैच्ड ऑब्जर्वर, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा. तो इस तरह से जो भी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, अगर उसमें हम अपने विचारों में परिवर्तन ले आते हैं, और उसके लिए प्रतिदिन हम आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग का अभ्यास करते हैं जिसके द्वारा ही हम ये परिवर्तन ला सकते हैं, तो हम काफी हद तक तनाव मुक्त, स्वस्थ और प्रसन्न जीवन का अनुभव कर सकते हैं. तो 2 पंक्तियों के साथ मैं इसे समाप्त करूंगी कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर तो मुस्कुराए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है. ओम शांति. तो अभी हम सभी 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे और फिर आपका नेक्स्ट सेशन शुरू होगा.